ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। कहते हैं हथेली में सूरज उग आता है, सुना था आज देख लिया, उम्मीद मिल जाए तो निर्जीव भी सजीव हो जाता है, सुना था आज देख लिया। आप यहां पधारे, हमारी हौसलों को एक नई उड़ान मिल गई, मानो आपके यहां आने से कैसे अच्छे लोग एक स्थान पर मिल जाते हैं, सुना था आज देख लिया। तो आप सभी अच्छे सच्चे श्रेष्ठ विद्वत जनों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारा मंच भी सज गया है उन महान विभूतियों से जिन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वरीय सेवा अर्थ, मानवता के कल्याण अर्थ समर्पित कर दिया है। हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं आदरणीय दीदी का, जो आज हमारे बीच हैं आज के सुंदर सत्र में। हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी, जो कि ओआरसी ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं, जो गुरुग्राम में हैं। हमारे साथ हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी जी, जो सब जोन हेड हैं ब्रह्मा कुमारी की, महादेव नगर अहमदाबाद में। और साथ ही हमारे साथ हैं आदरणीय सुषमा दीदी जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्रों की संचालिका हैं जयपुर में। तो एक बार हम हृदय से इन महान विभूतियों का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का जैसा विषय है लिविंग होप इन अ हार्ड वर्ल्ड, ये सब जीवित आशाएं हैं, ज्वलंत आशाएं हैं, जो न केवल अपने जीवन को आध्यात्म से प्रकाशित करके अपने जीवन में महानता के शिखर की ओर बढ़ रही हैं, बल्कि लाखों लाख आत्माओं को भी इन्होंने अपने जीवन से आध्यात्म की रोशनी प्रदान की है। हम नवरात्र में देवियों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मंच पर वो चैतन्य देवियां हमारे सम्मुख हैं जो सबके जीवन में प्रकाश ला रही हैं, सबके जीवन में शांति ला रही हैं, सबके जीवन में संतोष भर रही हैं। तो मैं ऐसी दीदियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के इस सत्र का प्रारंभ 2 मिनट परमपिता परमात्मा की स्मृति से करना चाहूंगा। जो भी कॉर्नर में बैठे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो सभी बीच में आ जाएंगे, सभी बीच के रोज में आ जाएंगे।
Thank you.
मैं बहनों से अनुरोध करूंगा कि हमारी आदरणीय दीदियों का सत्कार करेंगे, बुके, बैज और साथ ही साफा से। सचमुच जिंदगी के खेल को एक खेल की तरह खेलना आध्यात्म हमें सिखाता है, और इन दिव्य विभूतियों ने जीवन को न केवल खेल की तरह खेला, उसका आनंद लिया, बल्कि लाखों लाख लोगों को जिंदगी के खेल को खेल की तरह खेलना सिखाया है। आदरणीय मोहिनी दीदी जी, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, आदरणीय आशा दीदी जी, डायरेक्टर ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम, हम करतल ध्वनि से आज के हमारे इन दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों का स्वागत और सम्मान करते हैं, जिन्होंने स्वयं प्रकाशित होकर लाखों लाख लोगों को प्रकाशित किया है और जिनकी आध्यात्मिक आभा को हम अनुभव कर रहे हैं, जिनके सुंदर चिंतन और आध्यात्मिक ज्ञान ने लोगों को नया जीवन जीने की राह सिखाई है। आदरणीय सुषमा दीदी, आदरणीय चंद्रिका दीदी, हमारी ये सभी दीदियां पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी संपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रही हैं और मानव कल्याण अर्थ अपने आप को अर्पित किए हुए हैं। मित्रों, किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, दोनों ही जीवन के अंधकार को दूर करती हैं। असफलता से निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय अवश्य होता है। एक बार सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, अस्त होते होते उसने पूछा, कोई है जो मेरे जाने के पश्चात संसार को रोशनी दे सके। चारों ओर सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सूर्य का स्थान कौन ले सकता था। तभी एक नन्हा सा दीपक सामने आया, उसने कहा, मैं सारे जग को रोशन करूंगा, मैं करूंगा। जब एक छोटा सा दीपक सारे संसार को रोशन करने की चुनौती स्वीकार कर सकता है, तो हम सब तो ईश्वर के चैतन्य दीपक हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? अपना एक हाथ हिला करके तो बताएं। और ऐसे ही चैतन्य दीपक, जिन्होंने सचमुच स्वयं को रोशन किया और जग को सदियों से रोशन कर रहे हैं, वो आज हमारे बीच हैं इस सुंदर विषय पर प्रकाश डालने के लिए, और हम सबके अंदर भी आशा और उम्मीद की किरण को जगाने के लिए कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतियों में भी अपने जीवन में खुशहाल रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं और जीवन को खेल की तरह खेल सकते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आदरणीय आशा दीदी से। दीदी, आज के चुनौतीपूर्ण संसार में आशा का, उम्मीद का होना कितना महत्व रखता है? क्यों आवश्यक है आज ये इस चुनौती भरे दौर में?
ओम शांति। चुनौतियां जीवन को तराशने का साधन होती हैं। अगर जीवन में उतार चढ़ाव ना हो तो हमारा लाइफ ग्राफ कैसे रहेगा? क्या हम पसंद करेंगे हमारा लाइफ ग्राफ ऐसे सीधी लाइन वाला हो? नहीं। जिस लाइफ ग्राफ में उतार चढ़ाव होता है वह लगता है कि उस व्यक्ति ने जीवन में बहुत कुछ अनुभव पाया है। उतार चढ़ाव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। एक शांत सागर में चलने वाला जो नाविक है वो कुशल नाविक नहीं हुआ करता। इसलिए चुनौतियां, उनका हम स्वागत करें, और अगर चुनौतियां नहीं होंगी तो आपके अंदर जो बसी हुई विशेषताएं हैं, परमात्मा ने जो आत्मा के अंदर गुण भरे हुए हैं, विशेषताएं भरी हुई हैं, शक्तियां भरी हुई हैं, वो किस समय के लिए हैं? जब इस प्रकार की चुनौतियां हो, आज की परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी चुनौतियों भरी हो, परंतु उन विशेषताओं को भी तो एक्सप्रेस करने का कोई मौका चाहिए। तो ये वो मौके होते हैं। और सच पूछे तो मैं तो यूं कहूंगी कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय ने हमें ये सिखाया है कि तूफान तोहफा लेकर के आते हैं। तूफान में नौका, जहाज अच्छी तरह से पार उतरता है, और यदि सिंपल ही हो तो वो मौज नहीं होती। सच्चाई की बात यह है कि अंधकार के बाद, रात के बाद दिन आता ही है। सूर्य ढलने के पश्चात नेक्स्ट दिन आना अवश्यम भावी है। तो आशा की तो बात ही नहीं है, ये तो विश्वास और निश्चय है कि रात जाएगी और दिन आएगा। इसलिए आज की परिस्थितियों को देखते हमें घबराना नहीं है, परंतु विश्वास से वो कदम उठाने हैं जो हम उस विभा का, उस प्रभा का हम स्वागत कर सकें, हम उसके योग्य बन सकें। मैं सोचती हूँ हमें वो विश्वास को, आशा को विश्वास में और निश्चय में बदलना होगा।
बात सुंदर दीदी, सचमुच एक स्ट्रेट लाइन वो तो जीवन की निशानी नहीं है। अप एंड डाउन जीवन में आए तो ही हम जीवित हैं, और ये हमारी विशेषताओं को उजागर करने वाली है। दीदी ने ये बात कही, और तूफान तोहफा बन जाए ये हमारे जीवन में एक सुंदर सीख। लेकिन दीदी, आदरणीय मोहिनी दीदी से जानना चाहूंगा, दीदी जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है तब उम्मीद के दामन को हम कैसे थामे रखें? यद्यपि हम जानते हैं कि ठीक है, बातें आएंगी जाएंगी ये भी हम समझते हैं, लेकिन जब सब कुछ टूट रहा हो, छूट रहा हो, तब हम उम्मीद के दामन को कैसे थामे रखें? अपने विचारों को और भावनाओं को कैसे हम नियंत्रित रखें उस समय?
ओम शांति। जब हमें तीनों कालों का, वर्तमान, समय, भविष्य सबकी समझ मिलती है, और जब हमें ये ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, ये पहचान मिलती है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, और जब परिचय मिलता है परमात्मा का तो ऐसा महसूस होता है कि उनका मेरे से बहुत प्यार है, और जब प्रभु प्रेम है तो जीवन में बहुत वरदान प्राप्त होते हैं।
तो ना उम्मीद की तो बात होनी नहीं चाहिए, परंतु एक आत्मिक विश्वास, प्रभु का प्यार और प्रभु पर निश्चय जब जीवन में है तो ना उम्मीद होने की कोई बात नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा उससे भी अच्छा होगा और अच्छा होगा। तो हमारे बाबा ने हम सबको ये महामंत्र पक्का कराया है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा है और अच्छा होगा। तो जब परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें सर्टेनिटी नहीं है क्या होगा, हम लोगों को ये मन में प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। जब जो हो रहा है तो किसी ने पूछा कि उन्होंने अपनी कार कहीं पार्क की तो कोई ले गया, गुम हो गई, तो उसने बोला कि इसमें क्या अच्छा हुआ, इसमें क्या कल्याण हुआ। तो मैंने पूछा कि आपने कार को लॉक किया था क्या? वो ही भूल गया था मैं। तो मैंने कहा अब आगे से कभी ये भूल नहीं करना कि आप अपनी गाड़ी रखो और लॉक नहीं करो और गाड़ी चली जाए और फिर आप पूछो इसमें क्या कल्याण है। तो जो आपने सीखा तो हर परिस्थिति हमें एक पाठ पढ़ाती है, और जब हम सीख जाते हैं तो आगे के लिए वो गलती भी नहीं करते और ना उम्मीद होने की तो बातें नहीं रहेगी। तो जीवन जो है, कहते हैं लाइफ इज टू लर्न, हर बात से हम सीखते हैं और जो ईश्वरीय ज्ञान मिलता है उसको अप्लाई करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं जीवन में, तो ना उम्मीद तो हो ही नहीं सकते हैं। और मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि अगर आप निश्चय विश्वास बनाए रखिए, कुछ भी हो तो उसकी जो शक्ति है और परमात्मा की जो मदद है उससे अच्छा होता ही रहेगा और आवश्यक हो गई। तो कभी भी जीवन में ना उम्मीद नहीं होना है, और भविष्य को ज्ञान के नेत्र से देखेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा कि जो हो रहा है उससे और भी अच्छा होगा। ओम शांति।
एक बहुत ही सुंदर सी आध्यात्मिक दृष्टि दीदी ने हमें दी है। वैसे हम सुना करते थे अकबर बीरबल की भी कहानी कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन एक व्यावहारिक जीवन में वो उतर आए, सचमुच वो हमारी दीदियों के जीवन में, और साथ ही इस आध्यात्मिक ज्ञान का एक सुंदर सा प्रभाव कहें, बल कहें, वो सचमुच जीवन को ये एक सुंदर राह दिखाता है कि इस पथ पर हम चलें। चंद्रिका दीदी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। जैसे दीदी ने हमें एक समझ दी, एक दृष्टि दी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो ये जो चुनौतियां हैं, जो आज का हमारा विषय है लिविंग होप इन अ हार्ड वर्ल्ड, तो दीदी किसी को चुनौती लगती है, परेशानी लगती है, और किसी को हो सकता है वो खेल या तोहफा लगे, जैसे आशा दीदी ने भी कहा, तो क्या जो भी चीजें हमारे आसपास हमारे साथ हो रहा है उसके लिए हमारा नजरिया, हमारी सोच मायने रखता है कि हम उसे कैसे देखते हैं?
मैंने तो अपने जीवन में किसी भी बात को कभी कठिनाई के रूप में नहीं देखा। ये मुश्किल है, ये कैसे होगा, हमेशा मन के अंदर यही भावना रखी है कि जो कुछ हो रहा है उससे मैं क्या सीखूं। क्योंकि देखिए, जो अच्छा तैरने वाला होता है, स्विम करने वाला होता है, वो हमेशा एक और लहर की तरह इंतजार करता है कि थोड़ी सी और बड़ी वेव्स आए तो मैं उसको भी पार कर सकूं। तो जीवन में एक पहचान कहें, या देखिए खिलाड़ी एक बोला खेल है, तो वो हमेशा सोचता है कि अब दूसरी तरफ से जो बॉल आएगा, या बैडमिंटन खेल रहे हैं तो शटल आएगा, तो उसको पता है कि वो जोर से हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है। आप ट्रेवल करते हैं, पूरी तैयारी ले जाते हैं, एक एक्स्ट्रा टायर भी रख लेते हैं, भोजन भी रख लेते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। तो जो हमारी ये जीवन है, ईश्वरीय याद जिसको हम योग कहते हैं, ईश्वरीय प्यार, इसको सदा ही अगर हम अपने में बनाए रखें तो कभी भी आपको घबराहट नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, परंतु अपनी मन की स्थिति अचल और अडोल रखेंगे, एक रस रखेंगे, तो बाहर की परिस्थिति में कभी भी ना उम्मीद नहीं होंगे। अपनी स्थिति के आधार से, मनोबल के आधार से हर बात को ऐसे देखेंगे जैसे बहुत बहुत सहज है, तो परेशान होना ही नहीं चाहिए कभी भी। ऐसा अपने मन में दृढ़ संकल्प रहिए रखिए, कोई भी बात से मुझे परेशान नहीं।
तो जीवन में हम कभी भी परेशान नहीं होंगे यदि यही एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपने जीवन में अपना लें। दीदी चंद्रिका दीदी जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है कैसे हमारी जीवन में सहज हो जाए, क्योंकि कई बार जब बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो समझ होती है लेकिन वो समझ उस समय कार्य नहीं करती। कैसे उस आध्यात्मिक समझ को, उस दृष्टिकोण को हम उस समय अप्लाई कर पाए, आप अपने अनुभव से इस पर प्रकाश डालें।
ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि ये जीवन एक यात्रा है, और जब हम यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते पर उतराव चढ़ाई आना स्वाभाविक है, नदी नाले भी आना स्वाभाविक है। लेकिन जब हमारे मन में है कि हम यात्रा पर हैं, तो हम सब प्रकार की अपनी मानसिक तैयारी करके जाते हैं और यात्रा का सुख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम इस जीवन को यात्रा समझे, तो जीवन में आने वाला कोई भी दृश्य, कोई भी व्यक्ति हमें चैलेंज नहीं लगेगी, लेकिन एक नया अनुभव, एक नया परिचय महसूस होगा। दूसरी बात है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैं पैदा हो जाऊं और हमेशा बच्चा ही बन के रहूं। ये भी जीवन का क्रम है, बच्चे से युवा बनना, युवा से बुजुर्ग बनना, वृद्ध बनना। तो ये सब जीवन की वास्तविकता को हमने समझ के रखा है। इसी प्रकार आने वाली जीवन की हर बातें वो वास्तविकता है, और व्यक्ति डर तब जाते हैं जब वो समझते हैं मुझे उसका अनुभव नहीं है, मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूं, मुझे ये पहली बार करना है। लेकिन यही तो वास्तविकता है कि जीवन में हर कार्य पहले एक बार तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए उसको वास्तविक समझ के चलेंगे तो कभी आपको वो चैलेंज नहीं लगेगा। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो चैलेंज है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि चैलेंज ही हमें एक्सपीरियंस पर्सन बनाते हैं। अगर कहूँ मुझे परीक्षा देनी है, मुझे डिग्री भी लेनी है, मुझे आगे पढ़ना भी है, लेकिन जब एग्जाम देने का समय आ जाए तभी मैं अपनी हिम्मत को छोड़ दूं, तो मुझे जरूर चैलेंज लगेगी। इसीलिए जीवन के अंदर हिम्मत, साहस और विश्वास को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कहा जाता है हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। जब भी आपको जीवन में तकलीफ आवे तो ऐसा समझो कि मैं भगवान के नजदीक जा रहा हूं और भगवान मेरे नजदीक आ रहा है। क्योंकि आज जब सारा संसार परिस्थितियों के बीच है तब स्वयं भगवान भी आया है और हमने भी भगवान को पुकारा तब जब हमारे सामने चैलेंजेस आई। इसने बहुत अच्छा सुंदर संयोग कर लिया, आत्मा परमात्मा से मिलन हो गया, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है।
सचमुच एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। सचमुच दीदी ने कितनी प्यारी सी बात कही कि जीवन में जब विपदा आती है, परिस्थिति आती है, तो हम ईश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं। और सचमुच हम सब हृदय से इस बात को मानते भी हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। तो दुख आते हैं तो सचमुच ईश्वर याद आते हैं, ईश्वर की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो ये भी एक सुखद बात ही है कि ईश्वर से मिलाने का वो एक जरिया बन जाता है। लेकिन ये भी हम साथ में यदि ख्याल रखें कि यदि हम सुख में भी उसे साथ रखें तो वो दुख की परिस्थितियां तो आएंगी ही नहीं। सुषमा दीदी, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कठिन समय के बाद जीवन और अधिक सुंदर हो जाता है अपने अनुभव से? या और मैं जानता हूं हमारी सभी दीदियों से हजारों लाखों लोग मिलते हैं और इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो दीदी, ये जो एक प्रश्न है कि कठिन समय के बाद जीवन क्या अधिक सुंदर हो जाता है आपके अनुभव से?
ओम शांति। पहली बात, मैं कठिनाई को कठिनाई नहीं मानती हूं। बच्चा पैदा हुआ, बढ़ा, चलेगा, वो गिरेगा भी जरूर। हम कहें हाय बच्चा गिर क्यों रहा है? छोटा बच्चा गिरता है तो माँ कहती है देखो कितनी चींटियां मर गई, ताकि वो रोए नहीं, वो देखने लग जाता है। तो जो कठिनाइयां आती हैं, वास्तव में कठिनाइयां है नहीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक हमें अनुभव या ये कार्य इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये कठिनाइयां जिनको हम कहते हैं, वास्तव में कठिनाइयां नहीं, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए एक और कहें पुश, हमें आगे और धकेलती हैं, आगे चलो 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 और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है, जीवन में कठिनाइयां हैं ही नहीं। दूसरी बात, हम गाड़ी में बैठते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, चाहे आप कार में बैठें, ट्रेन में बैठें, बस में बैठें, अभी भी आप अपने अपने स्थानों से आए होंगे, किसी न किसी साधन से आए हैं। तो जब हम ट्रेन, बस, कार में बैठते हैं, हम सोचें अरे ये हमारा घर तो छूट रहा है, हमारा शहर छूट रहा है। नहीं, आपको मालूम है कि अगर मुझे नेक्स्ट अपने टारगेट पर पहुंचना है तो मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना ही है, आगे बढ़ना ही है। तो हमें खुशी होती है कि अच्छा ये परीक्षा आई तो ये परीक्षा नहीं थी, ये कठिनाई नहीं थी, ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस, जिसने मुझे अनुभवी बनाया कि ऐसी बात भी जीवन में हो सकती है, ऐसा भी आ सकता है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। मौसम को देख लीजिए, अभी बहुत गर्मी है, चाहते हैं बारिश हो जाए, पानी नहीं है, पानी की भी वृद्धि हो जाए, और अगर बारिश होने लग जाए और हम कहेंगे ए बारिश तो क्यों आ रही है, इतना कीचड़ कीचड़ हो गया, अभी मैं बाहर कैसे जाऊं। नहीं, हम क्या सोचते हैं, बारिश हो रही है और मुझे कहीं भी जाना है तो हमारे पास साधन है, हम छाता या रेनकोट उसको यूज करते हैं। तो परिस्थितियां परिस्थितियां नहीं हैं, वह एक अल्टरनेट है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप में तो बहुत खुशी होती है, कोई भी बात, कोई समस्या, कोई उलझन आती है तो मैं कहती हूँ अच्छा अब कौन सी बात नई होगी। तो अगर हमारे अंदर ये भावना है कि भगवान मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, ये स्थितियां परिस्थितियां मुझे कहीं ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हैं और मटका भी एक लाते हैं तो ठोक ठोक के, टूटे हुए मटके को कोई नहीं ठोकता है, सोना कसौटी पर देखा जाता है, तांबे लोहे को कोई नहीं देखता है। तो ये परिस्थितियां एक कसौटी है जो हमें अच्छी तरह तोल लेती हैं, तो हमें तो खुशी और शक्ति उससे मिलती है और परमात्मा को हम अपना सच्चा साथी बनाएं, ये प्रेरणा देती है।
बहुत ही सुंदर दीदी, सचमुच ऐसी प्रेरक बातों से लग रहा है कि चुनौतियों के लिए हम सब तैयार हैं, राइट? कौन कौन तैयार है चुनौतियों के लिए, जरा हाथ तो उठाएं। दीदी हम सब तैयार हैं, चुनौतियों को आपने खेल बना दिया और सचमुच चुनौतियां तोहफे हैं, ऐसा अब हम मान के चल रहे हैं। फिर भी आशा दीदी, एक बात लगातार हम इस मंच से सुन रहे हैं और जिसकी चाहना और कामना तो रहेगी हमें कि हम जैसा सोचें वैसा हम अपना भविष्य बना सकते हैं, अपना आने वाला कल बना सकते हैं। तो इस बात में सचमुच क्या पूर्णतः सच्चाई है कि मैं जो सोचूंगा वैसा ही मेरा आने वाला कल होगा, और यदि मैं ये सोचूं कि कल मेरा बहुत अच्छा होगा, कोई चुनौती नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, आनंद ही आनंद होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, क्या ये भी संभव है? क्योंकि मनुष्य मन की चाहना तो हमेशा आनंद और सुकून की होती है।
निसंदेह, as you think so you become, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा, ये केवल कहा नहीं जाता है, परंतु हम अपनी सोच से अपना भविष्य तैयार करते हैं। कौन ऐसा होगा जो अपने लिए कमजोर प्रकार के संकल्प रखना चाहेगा? नहीं, हर एक चाहता है जैसा आपने कहा, जीवन में सुख आनंद। और जो दृष्टिकोण चुनौतियों के प्रति है वो भी स्टेपिंग स्टोन्स हैं हमें आगे बढ़ाने के, जीवन को उन्नत करने के साधन है। जब हमारा उनके प्रति भी दृष्टिकोण बदल जाता है और मैं अपने लिए, केवल अपने लिए नहीं परंतु अपने साथी, अपने परिवार, समाज, सबके प्रति ऐसी शुभ भावना रखती हूं कि अच्छा हो, बुरा तो कोई सोचता नहीं, बुरा हो अच्छा ही हो, लेकिन उस संकल्प में जो सोच है वो मात्र एक फ्लीटिंग संकल्प नहीं होना चाहिए, उस संकल्पों में दृढ़ता होनी चाहिए। अगर आपने कोई संकल्प किया लेकिन कहीं और से कोई बात आपको देखने में आ गई और आपने उस संकल्प को ड्रॉप कर दिया, तो उसमें शक्ति कहां से आएगी? हम बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद हम बीज की रक्षा करते हैं, उसको प्रॉपर पानी मिले, ठीक धूप मिले, कोई चीज ऐसे ना हो जो उसको खा जाए, इन सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं। ऐसे ही जब हम उच्च कोटि के संकल्प अपने प्रति करते हैं या परिवार के प्रति या जो भी चीज है हमारे सामने उसके प्रति करते हैं, तो उसमें हमको परहेज के रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें किसी प्रकार का व्यर्थ ना हो, किसी प्रकार का नकारात्मक ना हो, किसी प्रकार की अन्य के प्रति दुर्भावनाएं ना हो, शुभ भावनाएं हो। जब इस तरीके की दृढ़ता से हम उन संकल्पों का पालन पोषण करते हैं, 100% जो संसार हम चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। और परमात्मा ने हम बच्चों को एक ये भी बात कही है कि अगर कुछ काम बच्चे आप करते हो, हिम्मत बच्चे, मदद दे खुदा, परमात्मा मददगार है, ये सब चीजें हम मानते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक जीवन में अपने आप से हम पूछें, जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है उस समय हमें पहले कौन याद आता है? हमें अपने संगी साथी याद आते हैं, हमें अपनी स्किल्स याद आते हैं, हमें अपनी विशेषताएं याद आती हैं। क्या सच में परमात्मा हमें याद आता है? जब कुछ भी हाथ में नहीं रहता तब लास्ट में हम कहते हैं प्रभु तेरी मदद चाहिए, अब तू ही जान। काश इस कॉन्फ्रेंस से, इस सेशन से हम अपने लिए ये संकल्प लें कि मैं तो करूंगी लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, और जहां परमात्मा का साथ है, परमात्मा का हाथ है, वहां पर कुछ भी असंभव नहीं है। और जैसा विश्व हम चाहते हैं, जैसी हम अपने लिए सोच चाहते हैं, वो हम करके ही रहेंगे, ये निश्चित है।
बहुत सुंदर दीदी, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, उसमें किस चीज की आवश्यकता है वो आपने हमारे सम्मुख रखा है, और निश्चित रूप से हम इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम अपनी सृष्टि और साथ ही समूची सृष्टि को बेहतर और सुखद बनाना चाहते हैं, जहां किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मोहिनी दीदी, आपसे एक प्रश्न। आध्यात्म की ओर हम सभी को चलने के लिए प्रेरित करते हैं, आध्यात्म क्या हमारी जीवन की सभी चुनौतियों का समाधान है, चाहे वो शारीरिक व्याधि हो, मानसिक व्याधि हो, या अन्य पारिवारिक व्यावहारिक समस्याएं हो, क्या सभी का समाधान आध्यात्म ही है?
मेरे को तो जब आप चुनौती मुश्किल, तो मैं ये सोचती हूँ कि हमने ये टॉपिक क्यों चुना, क्या सारे जीवन में चुनौतियाँ ही आती हैं? एक बार हम लोगों का इंटरव्यू था कहीं पर, तो एक प्रश्न था कि आपको जीवन में क्या कठिनाइयाँ आई, तो मेरे को कुछ याद ही ना है। तो देखिए, 98% लाइफ में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मौके मिलते हैं आपको, खुशियाँ मिलती हैं, प्राप्तियाँ होती हैं, 2% चुनौतियाँ होती होंगी। पर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि लाइफ में जो है वो चैलेंजेस ही हैं? लाइफ में तो बहुत अटेनमेंट्स हैं, कदम कदम पर अच्छा हो रहा है, सफलता मिल रही है, करण करावनहार परमात्मा हमें निमित्त बना के इतना कार्य करा रहे हैं। तो मैं अगर प्रश्न रखूं तो यही रखूंगी कि कठिनाइयों को क्यों याद करें? जो कुछ इतना अच्छी प्राप्तियां हो रही हैं उनका ज्यादा सोचे ना। हम लोग की परीक्षाएं, कितनी बार परीक्षा होती है साल में? चलो ठीक है, हम कहेंगे कदम कदम पर परीक्षा आ सकती है, पर कितनी आती हैं? तो हम एक एटीट्यूड बना लें लाइफ में कि परिस्थितियां तो देखो लिमिटेड होती हैं, जो एडवर्स है, मतलब जिसको हम चैलेंजेस कह रहे हैं। तो मुझे तो कठिनाइयां याद ही नहीं आती हैं और ना मैं याद करना चाहती हूँ। जो हमारे पास शक्तियां हैं, जो प्राप्तियां हैं, जो परमात्मा का साथ है, अगर हम उसका स्मरण करते रहें तो हमारी शक्तियां भी बनी रहेंगी, हिम्मत भी बनी रहती है, मुस्कान भी रहती है, खुशी भी रहती है। तो मैं तो प्रश्न ऐसा रखूंगी, जो आप सब ये सोचिए थैंक्स गॉड, ये कितना अच्छा हो रहा है, ये कितनी अच्छी प्राप्ति हो गई, जो बात बिगड़ रही थी तो बन गई, तो एक अंदर में आप ऐसा एटीट्यूड रखिए जो बहुत ग्रेटिट्यूड का हो, सदा थैंक्स करते रहो, कितना अच्छा हो गया, गर्मी थी बारिश आ गई, बारिश हो गई तो सारी हरियाली हो गई। तो ऐसा अगर हम आध्यात्मिकता के आधार से एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लें तो आपको कुछ भी मुश्किल लगेगा नहीं, न केवल ये, लेकिन आपका जो मनन चिंतन चलेगा, जो आपको प्राप्तियां हो रही हैं, शक्तियां मिल रही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बस वो ही याद रहे, तो बहुत खुशी भी रहेगी, संतुष्ट भी रहेंगे, खुद भी महसूस करेंगे कि भगवान के वरदान बहुत मिले हुए हैं, और दूसरों को भी हम अपनी दृष्टि से अपनी वाणी से वरदानों का दान करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर डायलॉग हुआ तो हमारा प्रश्न होना चाहिए जीवन की प्राप्तियों पर, न कि चुनौतियों पर। क्या समझते हैं आप सभी, आप एग्री करते हैं?
जरा हाथ उठा करके बताएं, दीदी से अग्री करते हैं? जी दीदी, सभी अग्री करते हैं, और इनकी लाइफ में भी लगता है कि वो चुनौतियां अब चुनौतियां नहीं वरदान बन जाएंगी, जो भी 2% है, और 98% ये सच बात दीदी ने कही है कि हम प्राप्तियों की ओर कम देखते हैं और जो अप्राप्तियां हैं उनकी ओर ज्यादा देखते हैं, चुनौतियों की ओर, समस्याओं की ओर हमारा ज्यादा ध्यान होता है, शिकायतों की ओर, और जो शुक्रिया करने का जो भाव है और प्राप्तियां हैं उनकी ओर हमारा ध्यान कम होता है। तो दीदी सचमुच इसकी ओर ही हम सब अपना ध्यान देंगे।
हमारी दादी प्रकाशमणी हमेशा कहती थी कि 98% सब अच्छा चलता है, 2% नहीं चलता है, लेकिन हम वो 2% देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारी लाइफ ही ऐसी है। तो दृष्टिकोण अपना ऐसा रखिए, आती है एक दो बात आती है, लेकिन बाकी तो सब अच्छा ही चल रहा है ना। अब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, सफलता ही सफलता है, पर कोई एक दो बात तो हो भी जाती है तो बड़ी तो नहीं है ना। तो हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करते रहें, सबका सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बस ऐसे शुभ संकल्प सदा अपने साथ रखिए।
बहुत सुंदर, इस नोट के साथ ही आज के इस डायलॉग को, समय को देखते हुए हम संपन्न करेंगे। बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन दीदी ने सार गर्भित रूप में हमें जो बातें दी हैं वो हम सब अपने जेहन में रखेंगे, और इस सत्र से जो भी हमारी दीदियों से बहुत प्यारी और सुंदर बातें निकल के आई हैं वो यही है कि हम सकारात्मकता की ओर देखें, प्रकाश की ओर देखें, और अपने आप को भी प्रकाशित करके औरों को भी प्रकाशित करें। मुझे याद आता है कि एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं, एक शांति, एक विश्वास, एक प्रेम और चौथी आशा। शांति, विश्वास और प्रेम तीनों ही बड़े निराश थे कि आज शांति नहीं है कहीं भी, प्रेम भी नहीं है, विश्वास भी एक दूसरे से टूटता चला जा रहा है, हम यहां रह करके क्या करेंगे। बुझ जाती आशा ही का जो मोमबत्ती है वो जलती रहती है। एक नन्हा बालक वहां प्रवेश करता है, रोने लगता है कि यदि तुम भी बुझ गई तब तो चारों ओर अंधकार हो जाएगा। आशा ने कहा कि नहीं, मैं जलती रहूंगी, और जब तक मैं जल रही हूं, मैं जीवित हूं, तब तक मैं शांति को भी प्रज्वलित कर दूंगी, विश्वास को भी प्रज्वलित कर लूंगी और प्रेम को भी प्रज्वलित कर लूंगी। अर्थात जहां आशा है वहां विश्वास है, वहां उम्मीद है, और वहां सचमुच जीवन है। तो इस आशा को, उम्मीद को हम हमेशा अपने जीवन में रखेंगे और हमेशा ही प्राप्तियों की ओर देखते हुए अपने जीवन में धन्यवाद का भाव लाते हुए अपने जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बनाएंगे। मन में ये गीत गाते हुए कौन सा, कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस विश्वास के साथ कि हमारे जीवन में भी सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा, और समाज और संसार में भी सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा, यही सुंदर संकल्प, और इसी संकल्प के बीच से हम एक नूतन सुंदर सृष्टि की ओर आगे बढ़ेंगे, यही संकल्प लेकर के हम इस सुंदर स्थान से जाएंगे। तो आप सभी का हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपनी दीदियों का भी हृदय से जोरदार करतल ध्वनि से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने थोड़े से समय में हमें वो आध्यात्मिक सूत्र दिए हैं जो सचमुच जीवन को प्रकाशित करने वाले हैं। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हम 3 मिनट उस परमपिता परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, और जिन्हें हम दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कि प्रभु आपने जो जीवन दिया, इस जीवन से हम औरों के जीवन में प्रकाश लाएंगे, विश्वास लाएंगे, आशा का दीप प्रज्वलित करेंगे। 3 मिनट साइलेंस।
हम फलक से हम